मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं सीधे ही मुख्य विषय पर आ रहा हूं। एक दो छोटी मोटी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें यहां नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इसी पर ही बात की जाए, क्योंकि जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो छोटी मोटी खबरें हैं, ठीक है, उन्हें कल कवर कर लेंगे, परसों कवर कर लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस विषय पर बात करने जा रहा हूं। जी हां, मैं आंसर राइटिंग पर ही बात करने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको एक छोटा सा अंश पढ़कर सुनाया था। अंश क्या? वो अपने आप में इंडिपेंडेंट आर्टिकल था। सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, वो अंश नहीं था, वो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र आर्टिकल था। उसका शीर्षक था हमें मार्ग दिखाती गीता, और फिर मैंने पढ़ करके सुनाया था, और इसको बकायदे प्रेस क्लिपिंग्स वाले हिस्से में भी मैंने डलवा दिया था, ताकि आप इत्मीनान के साथ वहां जाकर के भी उसे पढ़ सकें, और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, जो काम मैंने आपको दिया है, इत्मीनान के साथ उसे कर सकें। इस पर आप सबके बहुत से मेल मुझे मिले हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों के इस रुचि के लिए, आप लोगों के इस उत्साह के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, बात यह नहीं है कि आप कितना सही लिख रहे हैं, कितना गलत लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा करने से हमें कुछ लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए आप डेफिनेटली धन्यवाद के तो पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे काफी मेल मिले। एक बात मैं यहां आप लोगों से स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने इससे पहले शायद इसके बारे में बात नहीं की थी, कि दोस्तों आप जैसे मैं आज के डेली ऑडियो लेक्चर में आपसे कुछ कहता हूं कि आप इसके बारे में बताइए, लिख करके भेजिए, तो ये मान करके चलिए कि जो मेल आप आज शाम को 6 बजे तक भेज देंगे वही मेरे तक पहुंच पाएंगे। ऑफिस जो है हमारा, वो बकायदे उस मेल का एक PDF तैयार करता है, 6 बजे तक जो भी मेल आ जाते हैं, 6:15 तक, और फिर वो PDF मेरे पास व्हाट्सअप कर देता है ऑफिस, तो मेरे पास उतने ही मेल आते हैं। हाँ, इसके बाद भी जो आप मेल लिखेंगे वो खत्म नहीं होंगे, वो कल की डेट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि मुझे जिस विषय पर आज बात करनी है, तो डेफिनेटली उसमें आपका मेल शामिल नहीं हो सकेगा। यानी कि कल जिन्होंने भी 6:15 के बाद मेल लिखे होंगे, वो अपने को मेरे इस विश्लेषण से बाहर समझे, क्योंकि मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, है ना। हाँ, उन्होंने चूंकि मेल लिखे हैं, अगर उनके मेल से मेरी बातों का कुछ तालमेल बैठता है, तो बकायदे वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसे आप हमेशा के लिए समझ लें। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब भी आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो आपका यह धर्म बनता है कि आप उन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, अच्छे तरीके से पालन करें। आप लोगों ने किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कम से कम रोमन लिपि और देवनागिरी लिपि और हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से तो बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों ने पालन किया है, 100% सही। लेकिन एक दो स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने लंबे लंबे मेल लिखे, और जब मैं मेल लिखने की बात कहता हूं ना, तो ये नहीं कि केवल इसी उत्तर के जवाब में आपको छोटे मेल लिखने हैं। आप कल्पना करके देखिए कि आप कैसे सोचते हैं कि आप रोज जो है मुझे दो दो तीन तीन पेज का मेल लिखेंगे और मैं आपको उनके जवाब दूंगा। अगर मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, या आपका नाम मैं मेल लिखने वालों में शामिल नहीं कर रहा हूं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई बात तो होगी। आप अपने आत्मसंतोष के लिए अगर लिख रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उन मेल को ध्यान से पढ़ूंगा, उन पर विचार करूंगा, और विचार करने के बाद आपको कुछ उसके बारे में बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि आप सही नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इसे एक अच्छे सेंस में नहीं लेता हूं। बार बार जो बात आपको निर्देश के तहत कही जा रही है, यदि आप उन निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मुझे भी इतना अधिकार तो है कि मैं अपने ढंग से निर्णय ले सकूं। मैं जानता हूं कि हालांकि मेरी ये बातें आप लोगों को थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, कड़वी ही सही, लेकिन यदि वो फायदेमंद है तो वैसा किया जाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम मुख्य विषय पर आते हैं, जो हमारा सही सरोकार से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने जो भी मैंने पढ़कर सुनाया था उसे ध्यान से सुना, और प्रेस क्लिपिंग्स के तहत उसे पढ़ा भी, राइट? मैंने कुछ प्रश्न आप सबसे किए थे कि इसके आधार पर आप विचार कीजिए और विचार करने के बाद आप उन्हें मार्क्स दीजिए कि आप कितने नंबर देना चाहेंगे। आइए अब हम थोड़ी सी बात इसी पर करते हैं। दोस्तों, जो आप लोगों ने नंबर दिए हैं उसमें दो नंबर से लेकर और 10 में 10 नंबर तक दिए गए हैं, 2 से 10। और जो 50% स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लगभग 8 नंबर दिए हैं। 8 नंबर देने वालों की संख्या बहुत है, 10 में 10 नंबर देने वालों की संख्या भी ठीक काफी है, लेकिन 6-7 नंबर देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, 2-3 नंबर देने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं इक्के दुक्के, और बल्कि मैं कहूंगा इक्के, जिन्होंने कहा कि इसमें है क्या और इसमें कैसे मार्क्स दिए जाएं। ठीक है, चलिए अब आप उस पूरे रेंज को देखिए। चलिए हम 2 ले लेते हैं, अभी एक जो है दुविधा में है कि इस पर कैसे मार्क्स दिए जाएं, उसे छोड़ देते हैं। तो 2 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक ये रेंज है। जिन्होंने 2 नंबर दिए उन्होंने उनको फेल कर दिया, अगर हम 33% के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलें, लेकिन उन्होंने 2 नंबर दे दिए कि 0 देना जरा सा ठीक नहीं लगेगा, तो ठीक है, चूंकि गीता पर शीर्षक था और गीता पर उन्होंने कुछ लिखा है तो 2 तो पकड़ा ही दिए जाए, मैं नहीं कहता, 2 तो पकड़ा ही दिए जाए। हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में यही तो होता है, और ये हमारी आदतों को बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं कि कुछ लिखा है तो कुछ दे दो। नहीं, जो लिखा है उसके अनुकूल दो, और अगर नहीं ही लिखा है, जो कहा गया है वो उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप 0 दे दीजिए। अगर माइनस में चलता हो तो माइनस दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर हमारे बेसिक एजुकेशन के दौर में अगर ये चीजें की जाने लगेंगी तो सही बात यह है कि वहीं से सुधार शुरू हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो ये आपकी मार्किंग की रेंज है 2 से 10। जिसने 2 दिए उसको लग रहा है कि नहीं, बात बनी नहीं। जिसने 5 दिए तो मान के चल रहा है कि आधे से अधिक बात तो बन गई है, ठीक है 5 दे देते हैं। और जिसने 10 में 10 दे दिए उसका तो यह है कि अब इससे अच्छा तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, अभी तो उसने 10 में 10 दिए हैं, यानी कि 10 में 10 देने वाले के लिए ये परफेक्ट आंसर है। अब मैं आपके एग्जामिनेशन पर आ रहा हूं, प्रिपरेशन पर आ रहा हूं। जिसने 10 में 10 दिए हैं उसका कहना है कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और इससे अच्छा उत्तर अब नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब आप इसे अपनी तैयारी करने के ढंग से जोड़कर देखिए। अगर आपको लग रहा है कि इससे अच्छा नहीं लिखा जा सकता तो यही तो आपके तैयारी का पैटर्न भी होगा, क्योंकि जब आप तैयारी भी करेंगे तो इसी पैटर्न पर करेंगे कि इससे अच्छी तो तैयारी हो ही नहीं सकती। जो 2 नंबर दे रहा है उसको लग रहा है कि नहीं, अभी तो बहुत गुंजाइश है, अभी तो और भी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि जो पूछा गया है, मैंने एग्जामिनेशन में मान लीजिए मार्ग दिखाती गीता, यही बात मैंने कही थी, पूछा गया है मार्ग दिखाती गीता, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा हूं। गीता के ऊपर तो मैंने लिखा है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के अनुकूल मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूं, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो नहीं नहीं मुझे इस टॉपिक पर और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, अभी ठीक से ये विषय मेरी पकड़ में नहीं आया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आपके मूल्यांकन के आधार पर ही आपकी तैयारी निर्भर करती है। नोट कर लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके मूल्यांकन के आधार पर ही आपकी तैयारी निर्भर करती है। जिन लोगों के विश्लेषण मुझे ठीक लगे हैं और जिनकी मार्किंग भी 2-3 के आसपास रही है, उनमें मैं 4 स्टूडेंट्स के नाम लेना चाहूंगा। जी हां, चूंकि वो काफी कुछ बेहतर के करीब हैं तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उनमें एक हैं आकांक्षा श्रीवास्तव, दूसरी हैं जिज्ञासा मीना, तीसरे हैं निवृत्ति गायकवाड़, और चौथे स्टूडेंट हैं रमा शीश। इनका जो विश्लेषण है वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक ही है, अच्छा है, और मार्क्स देने में भी इन्होंने बहुत दरिया दिली का परिचय नहीं दिया है। मार्क्स देने में इन्होंने एक तरह से एग्जामिनर की भूमिका का निर्वाह किया है। अब ये बात अलग है कि ये जो एग्जामिनर है ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जामिनर न होकर के कॉलेज का लेक्चरर या प्रोफेसर हो गया है, लेकिन चलिए उतनी छूट दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां जो एक स्टूडेंट है जिनका नाम है जिज्ञासा मीना, उनके मेल को मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके ही बीच के स्टूडेंट है ना, सब जिनके नाम मैं ले रहा हूं और जिनके नहीं ले पा रहा हूं वो सब आप ही के स्टूडेंट हैं, आप ही के बीच के स्टूडेंट हैं। तो आपको देखना यह है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें क्या फर्क है, उनकी समझ में क्या फर्क है, मार्किंग का क्या फर्क है। आपको मैं एक पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप खुद अपना इवेल्युएशन कर सकें, रियल इवेल्युएशन कर सकें। ये मत मान करके चलिए कि जो लोग आपको बकायदे टेक्स्ट सीरीज के तहत आपके आंसर राइटिंग कराते हैं और जांच करके देते हैं, वो कोई बहुत अच्छा मूल्यांकन आपका कर रहे हैं। आपको खुद अपना मूल्यांकन करना आना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। मुझे अपनी तरफ से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा मीना ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, इंग्लिश में लिखी हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, हिंदी में भी मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, इफ द क्वेश्चन सेज गीता शोज अस द पाथ, कमेंट, अब कमेंट है, देन द आंसर गिवेन इन द आर्टिकल कीप्स मी वंडरिंग दैट हाउ डज इट डू सो। कितना अच्छी लाइन है कि जो इसका शीर्षक है वो हमें मार्ग दिखाती गीता, और जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा कहां है कि क्या मार्ग दिखा रही है, वो कौन सा मार्ग दिखा रही है। जिन्होंने 10 में 10 दिए हैं या 5 दिए हैं, जरा सा वो मुझे लाइन लिख करके भेजें कि कौन सा मार्ग दिखा रही है गीता। मार्ग की बात मैं कर रहा हूं, गीता की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं। शीर्षक में नहीं लिखा गया कि गीता की आरती लिखिए, गीता के प्रशंसा में कुछ शब्द लिखिए, ये प्रश्न नहीं है। मार्ग दिखाती गीता, तो बहुत अच्छा इन्होंने दिया है कि मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं ढूंढ रहा हूं कि कहां मिल जाएगी कहां नहीं मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इसमें जो जिज्ञासा शब्द नाम है ना, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, माफी चाहूंगा कि ये लड़के का नाम है या लड़की का नाम है। जिज्ञासा शब्द कुछ ऐसा है ना, तो आप लोग अपने ढंग से अनुमान लगा लीजिएगा। और जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें फिर जेंडर का बोध भी नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स गिवन इन द आर्टिकल टॉक्स अबाउट व्हाट गीता डज। इट शोज पाथ, इट सिंप्लीफाइज लाइफ, इट टेल्स टू फॉलो ट्रूथ एंड टेल अस विन ओवर द विशेस विच इज द रियल वार एज पर राइटर। गीता में जो आर्गुमेंट दिए हैं, जो बातें कही गई हैं, कहना चाहिए जो बातें कही गई हैं, वो क्या कहा गया है कि ये हमें रास्ता दिखाती है, ये हमारे जीवन को सरल बनाती है, ये हमें सच बोलने के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कहती है, और हमें ये बताती है कि ये जो है बुराइयों से कैसे लगातार संघर्ष करते रहें जो हमारे अंदर बनी हुई रहती हैं। ये वाक्य तो है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं कि कहां मार्ग दिखा रही, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। आई एम लिटिल हेजिटेंट टू से, ये विनम्रता है कि मुझे कहने में हिचकिचाहट हो रही है कि द आंसर कुड हैव कंटेंड आइडियाज अबाउट हाउ गीता शोज अस द पाथ थ्रू इट्स श्लोकास। मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि जो आंसर है उसमें ये बात होनी चाहिए थी कि भाई गीता कैसे हमें जीवन का मार्ग दिखाती है किसी श्लोक के माध्यम से। चलिए श्लोक के माध्यम से नहीं, तो आप वाक्य के माध्यम से कह दीजिए। योर्स ओबीडियंट जिज्ञासा मीना। दोस्तों, मैंने आपको केवल पढ़ करके सुनाया है, अब आपको चाहिए कि आप इस पर विचार करें। मैं अपनी तरफ से अभी कोई बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ही अपने ढंग से विचार करें। जिस दिन विचार करने की आदत आ जाएगी ना, उस दिन समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो अपनी बात मैं आज यही समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। दोस्तों, तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। कुछ के नाम मैं आपको बता चुका हूं, कुछ अन्य नाम हैं प्रदीप सिंह, अंजलि गौड़ उदयपुर से, पंकज बर्णवाल और अनीता शर्मा दिल्ली से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।